रहमान महान दिन बितरे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने जो सातवीं गाथा पर प्रवचन किया है उसमें एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक गाथा गुण भेद के निषेध की है, पर्याय के निषेध की नहीं है, क्योंकि पर्यायों का निषेध तो छठवीं गाथा में करे आए हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त जितनी भी पर्याय हैं तो 14 गुण स्थान रूप हैं, उनका निषेध तो छठवीं गाथा में करके आए हैं। यहां तो ये कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार नय का कथन है। न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, तो ये गुण भेद के निषेध की गाथा है। यद्यपि जब अगली गाथा आएगी आठवीं तो उसमें ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो आखिर व्यवहार को कहा ही क्यों, तो फिर वे उदाहरण में देंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि जैसे पर्याय की बात है। उसमें क्या लिखा है कि जो जाने सो जीव, देखे सो जीव, जो आचरण करे सो जीव, तो ऐसा लगता है ये तो जानना, देखना, आचरण करना, ये तो पर्याय है ना, इसके निषेध की बात है। लेकिन प्रश्न तो सातवीं गाथा पे खास कर खड़ा हुआ है, इसलिए भुगतो आचार्य ने बिल्कुल ऐसा मूर्ख शिष्य लिया था ना कि मेढ़े की भांति आंखें फाड़ के देखने लग गया कि दर्शन ज्ञान वाला आत्मा ऐसे व्यवहार से समझाया था। आत्मा आत्मा कहें, बिल्कुल अभेद अभेद तो समझ में आता ही नहीं, पर ऐसे भेद से भी समझाएं तो भी उतनी बात स्पष्ट नहीं होती। तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों को समझाया है कि जाने सो ज्ञान, माने वो गुणों को समझाया है पर्याय की तरफ से। वो आत्मा में तो वहां गुण गुण का गुण में जो भेद करें, जाने सो जीव, इसका निषेध नहीं है, इसका निषेध तो पीछे कर जाए। वो तो जो जाने सो ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान गुण, वो पर्याय नहीं जानने वाली, वो आत्मा में नहीं है, माने तत्संबंधी भेद नहीं है, अखंड पने अनंत गुण आत्मा में है, अन्यथा आत्मा कुछ बचेगा ही नहीं, सब गुणों से भिन्न कहेंगे और पर्यायों से भी भिन्न कहेंगे तो आत्मा तो बचेगा ही नहीं ना। तो जो अपन ने वो दृष्टि के पैसे वाली किताब भी लिखी है, उसमें व्याख्यान भी बहुत किए थे, कोई छठवीं सातवीं गाथा ही पर है कि उसमें गुणों की अखंडता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अखंडता है। और उन व्याख्यानों के आधार पर राजू भाई कानपुर वालों ने एक चित्र बनाया था द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, प्रदेशों की अखंडता, ये क्षेत्र की अखंडता, गुणों की अखंडता, ये भाव की अखंडता, पर्यायों की अखंडता, माने अनादि से अनंत काल तक अनुसूति से रचित प्रवाह, पर्यायों की अखंडता, एक काल की अखंडता, पद्रव तो अखंड है ही, तो ऐसी अखंडता उसका नाम द्रव्य है। और सातवीं गाथा गुण भेद के निषेध की है। अब वो जब वो शिष्य की समझ में नहीं आए तो क्या गुण क्या, अब क्या करे, ज्ञान ज्ञान गुण क्या, तो उसे समझाने के लिए फिर पर्यायों की तरफ से बात करते हैं। सूक्ष्म बात है जरा, उसमें हम क्या, हमसे थोड़ी सी कमजोरी क्या रह जाती है ना कि उस वक्त हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रकरण क्या चल रहा है। जो बात अपन सोचते हैं वो बात तो शास्त्रों की ही है और वो गलत है, नहीं है ऐसा नहीं कहना गलत है, लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं वो क्या है, बात सिर्फ इतनी है। देखो अपनी जो गाथा चल रही है 96, आज उसे जल्दी से ही 5-7 मिनट में खत्म करके और 97वीं गाथा मैं शुरू करना चाहता हूं। क्योंकि संतानवेवीं गाथा के बाद बहुत कलश हैं, तो अपन संतानवेवीं गाथा ही मुश्किल से पूरी कर पाएंगे, शायद ना भी हो पाए। तो इसमें जो अंत में मरम है संस्कृत टीका, आप निकालो अपनी अपनी किताब में, जिनके पास मूल टीका है ना, क्योंकि 96वीं गाथा की अंतिम तीन पंक्तियां, तथा अयम आत्मा, दो पंक्तियां नीचे से, ये मेरी वाली किताब है, इसमें दो पंक्तियां नीचे से है, दूसरी किताब में आप देख लेना। तथा अयम आत्मा अज्ञानात गे ज्ञाकौ परमात्मा अविवेकी कुर्मन, इसकी मैं आपको अर्थ ही पढ़ देता हूं जिससे भी आपका समय खराब नहीं होगा। देखो उसी प्रकार नीचे की तीन पंक्तियां हिंदी की, उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण गे ज्ञायक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूं, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषय भूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये मन यानी तुमने सोचा इनके बारे में, और जो विकल्प खड़े हुए उन विकल्पों को लेना, क्यों तो आकाश तो भी अपने उसमें आया नहीं। अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी हुई होने से, तीन कारण बताए हैं कि जिसकी वजह से अज्ञानी आत्मा हमको कर्ता प्रतिभाषित होता है। एक कारण तो ये हुआ कि धर्मादि के चिंतन में हमारी ज्ञान ज्योति रुकी हुई है, धर्म अधर्म आकाश और अन्य जीव कारण है ना। और दूसरा कारण इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका हुआ होने से, कि हम जो इंद्रियों से जान रहे हैं ना, तो उससे हमारा केवल ज्ञान ढका है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। अब इंद्रियों से जानते रहो तो उस वक्त अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होगा, तो केवल ज्ञान ढका होने से। और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन आत्मा के मूर्छित हुआ होने से, ये तीन कारण दिए हैं। उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है, उस प्रकार के भाव का कर्ता वो होता है। देखो इसमें बहुत अच्छी तरह से खोल के लिखा है, एक किताब जिसके पास हो 130 पेज, सोपाधिक के कर्तृत्व के संबंध में है ना, नीचे आत्मख्याति में तीन कारण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल एवं अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई है, रुकी हुई होने से। ये मन इनके बारे में सोच रहा, वास्तव में जो इंद्रियों के तो विषय है ही नहीं। एक पुद्गल को मानो तो असली में तो पुद्गल भी नहीं है, हम परमाणु को पुद्गल बोलते हैं, स्कंद तो पुद्गल की पर्याय हैं, रे भी विकारी पर्याय हैं। तो कल धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य और अन्य जीव, अब इनके बारे में जो कुछ भी हमारा है वो मन से हमने इनके बारे में सोचा है, वही तीसरी बात है, क्योंकि इंद्रियों से तो ये जानने में आते नहीं। तो हमारा मन इसमें अवरुद्ध है, तो मन के साथ में उपयोग अवरुद्ध है ना, अगर थोड़ी मन ही काम कर रहा, द्रव्य मन थोड़ी काम कर रहा, भाव मन है ना, तो हमारा मन इससे अवरुद्ध होने से लिखा ना, क्या अपनी चैतन्य धातु इनमें रुक द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई होने से, और इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ, अब वो पुद्गल तो वहां ले लिया था और यहां स्कंद लिया, पुद्गल का रूपी पदार्थ लिया, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ स्कंद हो गया ना, वहां परमाणु गया था, क्योंकि वहां सब द्रव्य ले लिए थे। अंतर समझ में आ रहा है ना कमल जी? सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं, यदि आप पढ़ते तो आपकी समझ में भी आता, लेकिन कोई इतनी गहराई से पढ़ता नहीं है ना, इसलिए पढ़ करके ध्यान दिला रहा हूं। और अपना उससे क्या हुआ, अपना केवल बोध ढका हुआ होने से, अब तो वहां कान नाक से देखते रहोगे और मन से सोचते रहोगे तो फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? वो तो इन मन वचन काय से उपयोग को अंदर हटाकर अंदर ले जाने से होता है ना। बहुत बारीक सीमा रेखा है। उत्तमचंद जी ने भी अपने प्रवचन में बात को स्पष्ट किया था कि भैया हमने तुमको सुपर प्रकाशक स्वभाव बताया, इसलिए तुम सारी जिंदगी पर को जानते रहो, उसमें ही अपने उपयोग को बर्बाद करते रहो, इसके लिए थोड़ी बताया। क्यों? अपने आत्मा का जानना ही मुख्य तो है ना, आत्म कल्याण के लिए उपयोगी। तो अब कुछ लोग तो जब इसके लिए उसको निषेध करते हैं जानने का, तो वो जानता है इसका ही निषेध समझ लेते हैं, और कुछ लोग जब जानने का समर्थन करते हैं तो खूब जानो। तो डॉक्टर लोग भी इस बात से बहुत परेशान हैं। मरीज लोगों के पास जाते हैं, देखो तुम्हारा वेट वजन बहुत बढ़ रहा है तो कंट्रोल करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका कहना तो मतलब है कि भोजन को मर्यादा में रखो, बिल्कुल नहीं खाओ ऐसा अर्थ नहीं है, और थोड़ा श्रम करो, घूमो फिरो, और धीमी गति से वजन घटे तो घटे, नहीं घटे तो नहीं बढ़े, इतने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे तो बेचारे इसलिए कहते हैं, और ये बिल्कुल छोड़ के बैठ जाता है, फिर बीमार हो जाता है, उनके पास जाता है, कहते मैंने ये कब कहा था कि नहीं खाएगा। तो रमल जी ने भी ये उदाहरण दिया है, वो कहते हैं कि भोजन से अजीर्ण हो जाता है, तो वैद्य अजीर्ण के लिए निषेध करे तो ये खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा। क्या खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा ना। अब आजकल ये आने लग गया है कि थोड़ा थोड़ा घी खाना। पहले घी के खाने का, मैंने चिकनाई के खाने का बहुत तेजी से निषेध आया था अखबारों में, टीवी में, सब जगह, कि लोग चिकनाई खा खा करके बहुत मोटे होते जा रहे थे, कहने में आई ना। और अब ऐसे छोड़ के बैठे हैं छोकरे, लड़के लड़कियां, इनको स्लिम रहना है। इसके लिए जे हम बुजुर्गों से भी ज्यादा बिल्कुल छुएंगे नहीं, देखेंगे ही नहीं। अब नई उम्र है तो उसके लिए जितना चाहिए ना थोड़ा बहुत, क्यों? तो ऐसे ही यहां जनवाणी में भी यही अति होता है। इसलिए तो अम्बे चंदाचार्य ने लिखा ना, अत्यंत निशित धारम जिन वर्ष नये चक्रम, जिनेन्द्र भगवान का नये चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। तीक्ष्ण धार वाला है, इसमें दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो एक ऐसे बहुत सावधानी से चलाना, किनकी देखरेख में? प्रबुद्ध नये चक्र संचारा गुरवो भवंती शरणम, गुरु ही शरण में है। और गुरु का मतलब फिर अपन लगाते हैं नंगे दिगंबर अथवा जो भी कपड़े वाले, जो भी समझ लो भाई, क्यों? और उनकी शरण में जाओ और उन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है। क्यों? चार दस वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, फिर पढ़ने का समय नहीं मिला, पढ़ने की जरूरत समझी थी नहीं है, अब चारित्री हो गया, अब क्या है? अब तो पंडित लोग सब चक्कर कांगेंगे, आंगेंगे, वैसे ही सब करेंगे, क्यों? तो उन्होंने शर्त लगा दी उत्तमचंद जी कि गुरवो भवंती शरणम, गुरु तो शरण में है, लेकिन कौन से गुरु? क्यों रजनी भाई? प्रबुद्ध नये चक्र संचारा, कि जो नये चक्र चलाने में अत्यंत चतुर हैं। ये क्वालिफिकेशन दी है उनकी, किताब ने गुरु लिखा था, हमने गुरुदेव कांजी स्वामी को मान लिया, अपने पंडितों को मान लिया। अरे पंडितों को मान लिया इसमें दिक्कत नहीं है, अपंडितों को मान लिया दिक्कत तो इसमें है। क्योंकि नये चक्र के संचार में चतुर कौन होगा? साधु हो तो वो भी पंडित होगा तो ही होगा ना, मतलब उसके चलाने में चतुर होगा ना ज्ञानचंद जी, कौन होगा बोलिए? प्रबुद्ध ने चक्र संचारा, उन्होंने तो ये विशेषण दिया ना, साधु और ग्रस्त कहां दिया? तो काली तो भगवान आत्मा का स्वरूप बताए, वो गुरु और वो देशना, और दुनिया भर की गप्पे लगाए यहां वहां की, सारा अमेरिका घुमाए, यहां घुमाए, वहां घुमाए, और आत्मा की बात ही नहीं करे, हैं? आत्मा की बात आते ही जैसे भड़क जाए, जैसे वो लाल कपड़ा दिखाने से तो वो थोड़ी देशना लब्धि में निमित्त हो जाएगा। क्यों? प्रबुद्ध ने चक्र संतारा, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा कि धार्य माणा झटती तलवार, एक तलवार है, कैसी तलवार है कि जो चलाई जाती है अपने माथे पे, और कटते हैं दूसरे के माथे, लेकिन चलाने वाला चतुर न हो तो अपना ही माथा कट सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से चलाना, जब तक तुम उसके चलाने में निष्णात ना हो जाए तो नए चक्र के संसार में जो चतुर हैं ऐसी गुणों के शरण में रहना, ऐसा अम्बे चंद्राचार्य देव का पुरुषा सिद्धि उपाय में आदेश है। बहुत बैलेंस है। और दूसरा अर्थ और है, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला, तो अत्यंत तीक्ष्ण धार होगी तो सिर कट जाएगा ना, दूसरे कटेंगे तो अपना भी कट सकता है। क्यों? चाकू बहुत बढ़िया हो तो सब्जी अच्छी कटती है तो उंगली भी अच्छी कटती है। क्यों? सब्जी ढंग से ही नहीं कटेगी तो उंगली क्या कटेगी? सावधानी से नहीं सब्जी काटेंगे तो उंगली भी कट सकती है ना, बहुत तीक्ष्ण धार वाला हो गया तो। और एक दूसरा अर्थ है, देखो दूसरा अर्थ क्या है जरा समझाने के लिए मेरे को, इस किताब का मैं सहारा लेता हूं। देखो आप देखने जरा हैं, अभी इस किताब को मुझे इस किताब पर रखना है ऐसी, तो जब कठिन काम है ना इस पर स्थिर करना, तो भी ये एक इंच मोटी किताब है तो ये रह गई। अब इसको पतली करते जाओ, पतली करते जाओ, और अब देखो ये पतली कर दी ना, इतनी कर दी, समझ गए आ गया, अब दिख रही क्या? नहीं, अब टकाओ। अब मेरे बस की तो नहीं है, कोई होशियार आदमी ही, बहुत ही ज्यादा बैलेंस वाला आदमी होए तो वो टका सकता है। अब इस पर ही टिकाना बस की नहीं है तो तलवार की धार को ऐसा खड़ा करो। अब समझ में आया मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, की ये खेल क्यों कर रहा था? तलवार की धार को ऐसा रखो और उस पर कोई ऐसी चीज टिकाओ, टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्योंकि वो कितनी बारीक है। बोलो शांतिलाल जी, टिकेगी कि नहीं टिकेगी? नहीं टिकेगी, ये सुनने के लिए नहीं समझा रहा हूं मैं, टिकेगी। कब? जब दोनों तरफ वजन बराबर होगा तब। एक एक तोला नहीं, एक रत्ती, वजन एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हुआ तो नहीं टिकेगी। समझ में आ गया ना? तो कितना बैलेंस बनाने की जरूरत है? टिक तो सकती है, ये रस्सी पे साइकिल चला के चले जाते हैं ना रे, तो आपको बने क्यों? और अपने जमीन पे ही नहीं चला पाते हैं। बात तो बैलेंस बनाने की है, टिकने की ताकत तो उसमें है ही। क्यों? दोनों तरफ का वजन का बैलेंस बन जाए तो सब टिक सकती है। तो इतनी तीक्ष्ण धार मतलब ये है, हम आप समझ रहे हैं ना? ऐसे ही इन हर मुद्दों में, चाहे सफर प्रकाशक हो चाहे कोई हो, रजनी भाई इतने बैलेंस की जरूरत है। बस तो सारा झगड़ा है, बस वो बैलेंस नहीं बन पाने का ही है, क्योंकि हमारी वाणी में उतनी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जब हम एक पक्ष पर जोर देते हैं तो कुछ ज्यादा ही पड़ जाता है। क्या? इसलिए सर्वश्रेष्ठ तर्क माले आचार्य प्रभाचंद जब ईश्वर बात का खंडन किया तो 75 पेज धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते गए। क्यों? यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा होगा, ऐसा मानोगे तो ऐसा होगा। उन्होंने जब नई की परिभाषा दी तो पहली शर्त रखी अनिराकृत प्रतिपक्षा। क्यों? कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे और अपनी बात कहे उसे नए कहते। भाई फिर ध्यान से आप सुनिए ना, यदि अपर पक्ष का निराकरण हो गया तो वो नए नहीं है, तो उनका गुण तो करें ना, गुण करना, गुण तो करना ही, गुण पूरा करना है क्या, और निराकरण बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने नए चक्र में लिखा है कि गौण करने का अर्थ उसके संदर्भ में चुप्पी है, कुछ नहीं बोलना है। यदि हम बोलते ही तो वो मुख हो जाता है। विवक्षित कौन है बोलो, कि जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं आपने कहा तो विवक्षित हो गया वो, अविवक्षित कहा ना। गौण माने अविवक्षित, ये शब्द समझते हैं हम लोग क्या नहीं, जिसकी अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से हम कथन कर रहे उसे बोलते हैं विवक्षित, और जिस अपेक्षा को हम कथन नहीं कर रहे उसे बोलते हैं अविवक्षित। तो अविवक्षित के बारे में बिल्कुल चुप रहो, एक शब्द बोले तो गौण नहीं होगा, अभावात्म बोलोगे तो अभाव हो जाएगा, और नहीं तर वो हो जाएगा क्या, मुख हो जाएगा। यदि गौण रखना है तो उसके बारे में चुप रहो, कि निश्चय नये से भगवान आत्मा पर और पर्याय से रहते ही है, ही घबराना नहीं क्या, कि और सहित नहीं है कि नहीं, चुप उसके बारे में चुप रहो, कुछ बोले तो खत्म। अब जब हमें उस सहित के बारे में बोलेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी अपन उसकी शुरू कर दी तो वो मुख हो गया फिर, अब मुख होता ही तो फिर उसका प्रतिपादन करना चाहिए, निषेध कैसे कर सकते हो, तो उसका स्वरूप बताओ। देखो और थोड़े अपने एक गहराई में समझें कि आपने टोडरमल जी की जयंती मना रहे हैं, समझना, क्या पूज्य गुरुदेव श्री की जयंती मना रहे हैं। अब आज का जो हमने एक घंटे का कार्यक्रम रखा है, सब लोगों को इकट्ठा किया है, हजारों रुपए का इकट्ठा किया, मेहमान इकट्ठे किए और बहुत बड़ा फंक्शन किया। अब हमने दो तीन वक्ता रखे, कभी आज टोडरमल जी का परिचय दे रहे, गुरुदेव श्री का परिचय दे रहे, है ना। अब वो गुरुदेव श्री के परिचय के देने में आचार्य कुंद कुंद से उनको समय सार से तत्व ज्ञान मिला, और फिर वो कुंद कुंद को इतना लंबा है कि एक घंटा पूरा कुंद कुंद की महिमा गाता रहे तो क्या होगा, बोलिए, कि कुंद कुंद इतने बड़े आचार्य नहीं थे, आखिर गुरुदेव को प्रभावित किया ना उनने, अब उनकी बात मानने को मना करते हैं कि भाई साहब अपने आप विषय पे आइए, विषय पे ही हूं आप बंद कर दीजिए, क्यों बंद कर दूं, दूसरों को भी बोलना है, मीटिंग पे 10 बजे खत्म ही करनी पड़ेगी क्या, तो वो पूरा खत्म टोटल मिलता है किस पे, यहां वहां कर दे तो बोलिए आपको कैसा लगे। तो आचार्य भी छोटे हैं, टोडरमल जी ने काम नहीं किया, अरे भाई वे अविवक्षित हैं, तो स्वामी जी के परिचय में जितना उनका उल्लेख जरूरी था उससे एक अक्षर ज्यादा अविवक्षित है, ख्याल में आए ना, तब वो पूरी तरीके से हम एक एक घंटे में तो वैसे ही नहीं हो सकता क्यों, लेकिन एक घंटे में जितना हो सकता है तब तो हम करेंगे, जब निश्चय का कथन आए तो व्यवहार को खड़ा कर दो, व्यवहार का कथन आए तो निश्चय को खड़ा कर दो, और व्यवहार संबंधी प्रश्न पूछ पूछ के उसको वहां से चका कर और व्यवहार पर बोलने को बाध्य कर दो, वो निश्चय एक तरफ रखा रहेगा। आचार्य ने नहीं दी है आज्ञा, एक शब्द बोलने के लिए आज्ञा नहीं दी, अनिराकृत प्रतिपक्षा लिखकर, ये प्रभाचंद्र जैसे आचार्य की बात है। प्रभाचंद्र के जानते हैं कौन सी किताब लिखी उनने, प्रमेय कमल मार्तन, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षामुख सूत्र, परीक्षामुख सूत्र है जैसे तत्वार सूत्र है ना सिद्धांत का, ऐसे न्याय का सूत्र है परीक्षामुख सूत्र, जो अकलंक आचार्य के वचनों का सार निकाल के माणिक नंदी ने बनाया, अकलंक के बचो मोहदो, अकलंक के वचन रूपी समुद्र में से जो मोती निकाले हैं वे माणिक चंदाचार्य ने, उनका नाम है परीक्षामुख सूत्र। वो परीक्षामुख सूत्र पर एक प्रमेय रत्नमाला नाम की टीका लिखी अनंत वीर आचार्य ने, ये सब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे कोई नई बात नहीं बता रहे आपको, समझे ना, हमारे बच्चे सब पढ़े हैं, मैं प्रमेय रत्न माला, प्रमेय तो अप्रमेय तो आप समझते ही हैं, प्रमेय तो गुण है, क्यों? ज्ञान की अपेक्षा सारे पदार्थ गेय कहलाते हैं और बे सारे पदार्थ प्रमाण की अपेक्षा प्रमेय कहलाते हैं, समझ गया? तो सारे दुनिया के लोग अजीबाजीब जितने पदार्थ हैं उन सबका एक नाम क्या है? प्रमेय। अब वो हुआ कमल, और कमल सूरज के खिलने पर जलता है, खिलता है ना, खिलता है ना, तो उस प्रमेय रूपी कमल को खिलाने के लिए जो मारतंड माने सूर्य के समान है, माने एक रगरग, ये प्रमेय पदार्थ के रगरग को जो स्पष्ट कर देंगे, ऐसी ये टीका, प्रमेय कमल मारतंड सूरज, तो एकदम कोई बात अस्पष्ट नहीं रहेगी। और प्रमेय रत्नमाला, के सूरज तो नहीं है, वो रत्नों की माला है जिनका खूब प्रकाश होता है, दीपक जैसा नहीं है, तेल मेल नहीं डालना पड़ता है, बत्ती नहीं लगानी पड़ती है, और वो रत्न की माला, उसके प्रकाश में हम उस प्रमेय को समझाएंगे। प्रमेय को ही समझना मुख्य है, ऐसा प्रमेय तो सारी दुनिया है। अरे अपना भगवान आत्मा भी तो प्रमेय है ना, अपना भगवान आत्मा भी तो गेय है, तो गेय को समझना मुख्य नहीं है, क्यों? अपने भगवान आत्मा को समझना मुख्य नहीं है। अब गेय में हम दो भेद तो गेय के हैं, सपर स्व और पर, क्यों? ज्ञान तो दो है ही नहीं, ज्ञान तो स्व ही स्व में है, तुम्हारा ज्ञान तो मेरे लिए गेय है, क्यों? वो तो गेय में आता है, तो इसलिए ये कहते हैं भाई कि उस बारीक कि हमारा इन तीन कारण यहां पर दिए, अपन इसमें पढ़ रहे थे ना, देखो मन के विषय भूत, धर्म अधर्म, आकाश काल और पुद्गल, यहां पुद्गल ले लिया, और अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य घाती रूपी हुई होने से, और इंद्रियों के विषय भूत रूपी पदार्थों में, तो पुद्गल तो रूपी है, पुद्गल तो ऊपर ले लिया था, तो वहां तो जो इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता वो पुद्गल लिया था, और यहां इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता है वो पुद्गल लिया है। इतना भेद इसमें आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। केवल बोध ढका हुआ होने से, क्यों केवल ज्ञान क्यों ढका हुआ है, जरा एक भाषा, क्यों केवल ज्ञान क्यों ढका है, उसका प्रतिबंधक कारण क्या है? करुणानियोग वालों से पूछेंगे तो कहेंगे केवल ज्ञानावरण कर्म, अध्यात्म वाले कहेंगे कि क्षयोपशम ज्ञान, इंद्रियों के माध्यम से काम में आने वाला ज्ञान, क्यों? ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्षयोपशम ज्ञान होगा तो क्षायक ज्ञान नहीं हो सकता, क्षायक होगा तो क्षयोपशम नहीं हो सकता। भैया जब तक ये क्षयोपशम ज्ञान रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये केवल ज्ञान का विरोधी हुआ पक्का, लेकिन होगा काय से कि वही क्षयोपशम ज्ञान को जब आत्मसन्मुख करेंगे तो होगा, तो क्षयोपशम ज्ञान के काल में जो केवल ज्ञान का पुरुषार्थ होता है वो क्षयोपशम ज्ञान की आत्महत्या का पुरुषार्थ है। खबर घबराए ना, क्या समझी? क्योंकि उसे क्षयोपशम ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। देखो ये एक जो है ना आत्मीमांसा, उसमें चौथी कारिका है, बहुत मार्मिक है, अतिशयानाथ हेतु है ना, क्या है वो? ज्ञान का क्षयोपशम घटता बढ़ता है, अतिशयानाथ माने घटता बढ़ता, बोलो, दोषावरण और हानि निशेष अतिशयानाथ, कि दोष और आवरणों की हानि एक दिन पूरी हो सकती है, क्योंकि वो घटती बढ़ती है, जो जो चीजें घटती बढ़ती हैं वो एक दिन पूरी घट सकती है और एक दिन पूरी बढ़ सकती है। दोष और आवरण, दोष माने रागाधिक और आवरण माने क्षयोपशम ज्ञान है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण, समझ गए ना? दोषावरण, दोष और आवरण घटते बढ़ते हैं इसलिए एक दिन पूरे घट सकते हैं और एक दिन पूरे बढ़ सकते हैं, तो समझ जाए ना, अब जरा समझना, धन कुमार जी ध्यान देना जरा, कि यदि क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते 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 जाएगा तो कहां तक जाएगा? मन पर ज्ञान का जो अंतिम है ना, सर्वावधि परमावधि, और उसका भी जो अंतिम पॉइंट है वहां तक बढ़ेगा, और घटते 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 क्षयोपशम ज्ञान तो कहां तक जाएगा? केवल ज्ञान। घटते घटते केवल ज्ञान, ये लिखा है शास्त्र में। क्यों बनाए बाबू, सुनी थी कभी बात? हाँ सुनो, बढ़ते बढ़ते तो मन पर ज्ञान का अंतिम बिंदु पहुंचेगा, और घटते घटते केवल ज्ञान होगा। तो ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो गया ना, क्षयोपशम ज्ञान खत्म होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता है। ज्ञान स्वभाव खत्म नहीं होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं है। चाहे ज्ञान भी खत्म नहीं होता क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं है, और क्षयोपशम ज्ञान घटता बढ़ता है। ज्ञान का क्षयोपशम, वो वास्तव में ज्ञान का क्षयोपशम माने आवरण, आवरण घटता बढ़ता है तो पूरा हट जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो घटते घटते केवल ज्ञान, हमने तो ये 10-12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, जब गुरुजी ने पढ़ाया तो पैरों के नीचे जमीन खिसकी, क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे। बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसने आत्ममीमांसा की चौथी कारिका पढ़ी है वो सबको पता है, उन सब विद्यार्थियों को भी पता होगा, क्यों था ना, तुम्हें पता है ना। अभी मैं हाथ उठवाऊंगा ना तो यहां पर कम से कम 2 ही हाथ उठवाऊंगा तो 400 हाथ उठ जाएंगे। क्या वो उनने अतिशायन हेतु दिया, घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना। अब जो घटता बढ़ता है त्रिकाली स्वभाव थोड़ी घटता बढ़ता है, उस पर थोड़ी घटेगा। क्षयोपशम ज्ञान की बात है तो यहां वो ही तर्क है कि इंद्रिय ज्ञान से केवल ज्ञान ढका है, क्यों जब तक ये रहेगा तब तक वो होगा नहीं। देखा लिखा पढ़ा ना, फिर कहां है इंद्रियों के विषय भूत रूपी पदार्थों के द्वारा, क्योंकि रूपी पदार्थों के जानने में लग रहे हैं इंद्रियां, अपना केवल बोध ढका हुआ होने से। देखो मैंने बालबोध पाठमाला भाग 3 में इंद्रिय नामक पाठ में लिखी है ये बात कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? तो उसमें लिखा कि ये आत्मा के जानने में निमित्त भी नहीं है, ये तो सिर्फ पुद्गल को ही जानता है, और आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा, पुद्गल के जानने से नहीं होगा। क्यों, इसमें कहीं ऐसी कोई गंध है कि तुम पर को हमेशा जानते रहो? जानते रहो नहीं जानते रहो तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। केवल ज्ञान में तो सारे लोकालोक एक साथ झलकेंगे, कोई रोक नहीं सकता, समझ गए ना। अब रह गया क्या थे उसमें ज्ञान में, अब तो वो तो हमारे हाथ में आ गया ना, कुछ तो इसको अपने हाथ में चाहिए। तो गुरुदेव के पुण्य प्रताप से वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी एक एक समय की पर्याय का कौन गे बनेगा ये अनादिकाल से नक्की है, तुम्हारे किसी काम से नक्की नहीं होता। कि मैं ऐसा काम नहीं करूं कि उसमें पर जानने का मुझे ऐसा बंद होए, किसी कर्म के बंद से नहीं होता है ये नक्की तो स्वभाव से है उत्तम जन जी, है ना। सहयोग संरक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्थम व्यवस्था प्रति, तो भी जानो नहीं जानो ये तो उपदेश की भाषा है, बहुत स्थूल है, इससे तत्व का निर्णय होता है। हर जगह लिखा है पर को मत जानो, आत्मा को जानो, पर को मत जानो, अब आता क्या नहीं आता, सारी दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। जाना नहीं यदि आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ये बराबर खूब उपदेश होगा, इससे तत्व का निर्णय नहीं होता है भाई साहब। ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये चरणानी योग नहीं है। तो चरणानी योग क्या है कि इस भूमिका में ऐसा आचरण होता है, ये चरणानी योग है। मुनि की भूमिका में ऐसा आचरण होता है, पंचम गुण स्थान वृद्धि की भूमिका में ऐसा होता है, सातवीं प्रतिमा में ऐसा होता है, पहली में इतना होता है, अवृत्ति के ऐसा होता है, आप समझ गए ना। इसका नाम वास्तव में चरणानी योग है, भगवान ने वो बताया है, ये करो ये नहीं करो तेरे हाथ में है क्या? कल गुरुदेव के प्रश्न में आया था ना, क्या आया था बोलो अशोक भाई, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा गुरुदेव के प्रश्न में आया था। यदि गुरुदेव के प्रश्न में नहीं आया होता तो मैं इसका उल्लेख नहीं कर सकता कि साथ ये तो अजैनियों की कहावत है। अरे भाई जब ज्ञान की त्रयोसम ज्ञान की पर्याय का ये नक्की है तो इसमें कौन सी गजब बात है, ये भी परम सत्य है। जो दाना तुम्हारे पेट में जाना है सभी की क्रम में तो पर्याय नक्की है ना, एक एक परमाणु की नक्की है ना, क्यों समझ में आता क्या मोदी? तुम्हारा नाम माम भूल जाता हूं भैया, अब याद करना पड़ेगा कि तुम्हारे यहां शिविर रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने मंजूरी फंजूरी नहीं दी है, धोखे में मत रहना, ये तो तुम्हारा वो छाबड़ा जी का षड्यंत्र है। जो जयपुर का शिविर अगला है वो पक्का, और वो प्रेमचंद जी बजाज मुख्य उसके आयोजक हैं, ख्याल में आए ना। और वो कौन सा ट्रस्ट है जो भी है, वो कोटा का ट्रस्ट है मुख्य आश्रम ट्रस्ट की ओर से, और बाकी अभी मैंने निमंत्रण प्राप्त हुए हैं। निमंत्रण तो हर एक कोई देता है, और गंभीरता से विचार भी करते हैं, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं तो करना ही है ना, क्यों करना तो कहीं ना कहीं है। तो जहां लोगों का बहुत प्रेम है, आग्रह है, अधिक से अधिक लाभ होगा, हमें लगेगा कि व्यवस्था संभव है, तो क्यों नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इतने पहले से थोड़ी नक्की होता है भैया, वो तो दो चार पांच महीना पहले ही नक्की कर पाएंगे तो पक्का। तो भावना सबकी है। हाँ तो अपनी बात दो बातें चल रही थी, दूसरी अब तीसरी बात है, वो मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से, ये गुरुदेव बहुत बोलते थे कि मृतक कलेवर में ये भगवान आत्मा मूर्छित हो गया। क्यों गुरुदेव के इस वाक्य को पकड़कर सामने वालों ने कहा था जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर, ये जो मृतक कलेवर है वो कौन सा, जो आदमी मर गया और उसका जो वो मुर्दा है जो श्मशान में जलाने को ले जा रहा है, उस मुर्दे की बात है क्या मैंने कि ये जो तेरा आत्मा अभी जिसमें विराजमान है इस मुर्दे की बात है, इसमें से आत्मा को अलग करके देखो तो ये अभी मुर्दा है, क्योंकि ये भगवान आत्मा इसमें ही मूर्छित हुआ है, मूर्छित हुआ है ये मैं हूं ऐसा मान ला, इसका ही मैं स्वामी हूं, इसकी संभाल करना मेरा काम है ना। काया राखे धर्म है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने सारे अपने आचार देने वाले उपदेश देने वाले ये खास कर दे योगा योगा वाले ये सब उपदेश यही देते हैं, लेकिन भैया ये तो कालिदास का सूत्र है शरीर माध्यम खलु धर्म, ये जैन धर्म का थोड़ी है। काया राखे धर्म कि काया मैं नहीं हूं ऐसा मानने से धर्म होगा, काया मैं नहीं हूं ऐसा जानने से धर्म होगा, और काया के प्रति राग कम होगा तो धर्म होगा, काया की संभाल में धर्म है। नहीं नहीं वो व्रत उपवास करना पड़ेगा तो शरीर को स्वस्थ तो रखना ही पड़ेगा, और फिर व्रत उपवास करने से स्वस्थ रहता भी है, हैं? धीरे में कहते हैं जो ध्यान शरीर के से छूटने के काम में आया था अनंत काल से, हमारे सारे तीर्थंकर नौ कि देह रूपी जेल से छूटने में जिसका उपयोग किया, तन तो अपना कारागृह है ना, क्यों तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजान जान राख वाले, क्या अर्थ है इसका, बहुत योजना बोलते हैं खूब मस्त होकर के शरीर जेल है और बनिता माने पत्नी है वो पैरों में पड़ी बेड़ियां हैं, और ये कुटुंबी जन है ना बाल बच्चे माँ बाप भाई बहन और भी कुटुंबी जन का अर्थ समझते हैं ना, ये सब रखवाले हैं, रखवाले माने तो पुलिस वाले होते हैं ना रक्षा करते हैं, जो तो रक्षा करने वाले दो तरह के होते हैं, कौन से, एक तो प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले कमांडो है ना, कि प्रधानमंत्री को कोई मार ना दे, उन पर कोई आक्रमण ना करे, उनको भी रक्षा करने वाले बोलते हैं। वो एक वो है ना, वो बंबई वाला कौन है, कसाब, वो कसाब को भी बेई कमांडो लग रहे हैं। वो तो मुझे जी कल बता रहे थे कि कलेक्टर के बराबर तनख्वाह मिलती है उन्हें, उनके कमांडो को, मुझे तो पता नहीं था। क्यों, तो कसाब की रक्षा करने वाले भी हैं, क्योंकि उसे भी ना कोई मार दे, क्यों उसे मार देंगे तो हम फांसी पे कैसे चढ़ाएंगे। तो ये जो परिजन रजन रखवाले हैं शांतिलाल जी, ये कैसे रखवाले हैं, वो प्रधानमंत्री वाले जैसे के कसाब वाले, समझ में आ गया। कि ये छूट के भाग ना जाए, ये छूट के भाग ना जाए, परिवार वाले घेर के बैठे हैं। तो अभी एक बोलते हो तुम रोजीना ये हो, तो ये तन काराग्रह है, तो इससे छूटना है कि इसको मजबूत करना है। हम तो कहते हैं कि देखो हमको इससे छूटना हो तो पहले किले को मजबूत करो। क्यों, ये कहां का न्याय है, लेकिन सबके गले उतरता है, जानते जी करें क्या है? इस देश में इतना अपनापन है, इतना राग है, कि उसकी अनुकूलता की बात जहां भी जरा आती है वो एकदम सहज भाव से गले उतरती है, और प्रतिकूलता की बात आती है कितनी कोशिश करो नहीं उतरती। सच मैं अनुभव करता हूं, कई दफे कहता भी हूं कि हमने जो काम चुना है वो इतना कठिन है, इतना कठिन है, ये ऐसा है कि बंगाल की खाड़ी से गंगा जल लेकर के और गंगोत्री तक पहुंचाना, और गंगोत्री का गंगा जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने में एक पैसा खर्च नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी अपने आप दौड़ते हुए पहुंच जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में से घड़ा भरो और गंगोत्री में डालना हो तो लाखों का खर्च हो जाएगा। क्यों, ले जाना पड़ेगा ना, क्यों कि जगत का प्रवाह जहां को, जहां गंगा का प्रवाह जहां को हो रहा है वहां को जाना बहुत आसान है। ये जगत का प्रवाह देह के एकत्र बुद्धि देह की संभाल की तरफ हो रहा है, तो उसके संभालने की बात कहो, उसके संभालने की विधि बताओ, व्यायाम बताओ, प्राणायाम बताओ, दवाई बताओ, तो सारा जगत बहुत ध्यान से सुनता है। देखो वो ये उंगलियों में दर्द हो, ऐसी ज्ञान मुद्रा लगाना, वो ज्ञान के लिए कोई ज्ञान मुद्रा नहीं लगाता, उंगलियों में दर्द नहीं हो इसके लिए ज्ञान मुद्रा, नाम इतने बढ़िया बढ़िया रखे क्या, उस सभासन का नाम रखा है पंडित, क्या रखा दादा, कायोत्सर्ग, मालूम सभासन समझते हैं, जिंदा ही मुर्दा हो जाना, ये मृतक का लेवल, सब सब जो सब आसन प्लस हो जाएगा ना, वो संधि हो जाती, तुम जरा बैठो भैया, तुम मत बोलो, कम समझते हैं, सब प्लस आसन सभासन, वो सवासन नहीं है जो शादी में काम आती है, एक खवासन एक सवासन, दूल्हा की बहन वो नहीं है यार, दुल्हन की बहन वो सवासन नहीं, वो योगा वालों का सवासन, उसे कहते कायोत्सर्ग। अरे कायोत्सर्ग तो देह से उपयोग हटाकर सुकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर ले जाने का नाम है, तो वहां तो कहते हैं कि शरीर को देखो बखरम, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कुछ करो मत, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, वो सिर्फ देखो उसे, ये सवासन है। ये पूजा के बीच में काय उत्सर्ग करते हैं ना, बीच में काय उत्सर्ग कम करोगी हम, क्यों करते हो ना, क्या नाम तुम्हारा, देवेंद्र, क्या क्या बताइए वो क्या करते हैं, पंडित जी आपको पता नहीं है, बहुत दिनों से पूजा करी कराई नहीं है इसलिए नहीं है पता, बता दो भैया क्या है, तो बीच में खड़े होकर नौ दफे नौ का आनंद पढ़ना पड़ता है ना, उसे काय उत्सर्ग कहते हैं। अरे भैया ये नहीं है, क्या है कि हम भगवान की भक्ति करते करते हमारे आत्मा का चिंतन ऐसा चल रहा था कि उपयोग वहां से हटकर और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे चला गया, उसका नाम कायोत्सर्ग है। क्योंकि ध्यान के बगल का तप है जी, 12 तप है ना, वित्सर्ग और ध्यान, 11वां तप है वित्सर्ग है ना, वो है ये तीन, लेकिन नहीं है वो तो हम लोग एक क्रिया में बांध दिया उसे। तो इन तीन चीजों ने कि मृतक कलेवर में ये अपना जिंदा शरीर है समझ लो, इसमें भगवान आत्मा इसकी समाज में मूर्छित हो गया है, ऐसा ये कहते हैं कि तीन कारण हैं कि जिसके कारण ये गड़बड़ हुई है। देखो यहां यह कहा जा रहा है कि पहले तो मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में यह आत्मा इतना व्यस्त है कि उसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं है। दूसरे इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों में ज्ञान की व्यस्तता के कारण ही अपना केवल ज्ञान स्वभाव ढका हुआ है। और तीसरे भगवान आत्मा इस मृतक शरीर में इतना आसक्त है कि अमृत स्वरूप यह ज्ञान का घनपिंड ही मूर्छित हो गया है। देखो यहां जिंदा शरीर को ही मृतक शरीर कहा गया है, जिसे दुनिया जिंदा कहती है ना उसे मृतक कहा गया है। वस्तुतः शरीर तो मृतक ही है क्योंकि उसमें जीवन है ही कहां, जीव का धर्म है, जीव का स्वभाव है, यह शरीर में कैसे हो सकता है। अतः शरीर तो मुर्दा ही है, मुर्दा या मुर्दा जैसे शरीर में अपनेपन के कारण आनंदामृत का पिंड यह भगवान आत्मा पागल सा हो रहा है। और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों के भोगने और जानने में, मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में इतना मग्न हो गया है कि इसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं है, भाव भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, कौतूहल भी नहीं है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों और शरीर में मग्न यह अज्ञानी आत्मा पर पदार्थों का नहीं पर उनके कर्तृत्वादि भावों का कर्ता अवश्य होता है, ऐसा आत्मा। ये उस आत्मा के विशेषण बताए जिसको हम यहां कर्ता कह रहे हैं, क्या वो एक नैसे तो है ना, वो अशुद्ध निश्चय नैसे, निश्चय नैसे करता है। अरे भैया किसको बता रहे हैं, उस महामूर्ख को पागल को बता रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ना, उसे कर्ता कह रहे हैं, वो किसी ज्ञानी को कर्ता नहीं बता रहे, उस पागल को कह रहे हैं। अब आप पागल कहते साहब, अब ऐसी भाषा तो नहीं बोलना, मैं नहीं बोलता हूं, गुरुदेव की तो पढ़ो, इससे भी कड़क है, मैंने सारे कोटेशन इसमें ला के रखे हैं। ये भाषा में पागलपन नहीं है, ये मत तो उन्मत्त लिखा ना अपने शास्त्र में, ये जो ये है कि इनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना, इनमें ही अपनी जिंदगी को खराब करना, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है, मुझे बताओ आप। अब एक चर्चा काय की चल रही है अमृत भाई, फिर याद करो, ये चर्चा उस संदर्भ में है, वो कौन ध्यानावस्था और भूतावस्था उसकी बात चल रही है। ये कह रहे हैं कि राग का कर्ता ऐसा जो मानता है उसे भूत लग गए हैं, भूत उनका इलाज कराओ, ये भूत है, हैं? और वो ध्यान अवस्था वाला क्या, ये आप वो कहते हैं हमको तो बहुत शांति अनुभव भई, अंदर में ऐसा आत्मा दिखा, भैया वो ध्यान अवस्था वाले को दिख जाता है, जो नहीं है वो भी, घबराना नहीं, मेरी बात सुनना पूरी। मैंने एक दफे लिखा था, मेरी वो बात बहुत पसंद की गई थी यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा तुलसीदास जी को राम के दर्शन हुए थे क्या, उन्होंने कह दिया कि बस तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, और बस मैं तो ध्यान में बैठ गए है ना, तो तुलसी भगवान आए और उन्होंने कहा भाई घबरा मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, और तो भगवान जो आए थे ना बराबर धनुष बाण लिए हुए थे, तो पहले से जानते थे कि मैं दूसरे देश में जाऊंगा तो वो तो तुलसी मेरे को माने पहचानेगा ही नहीं। तो ये बात आई तो जब मैं वहां पढ़ता था तो लोगों ने पूछा कि ये बात सही होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनने मेरे से पूछा था कि तुलसी को भगवान राम के दर्शन हुए होंगे और कहीं तुलसी छल तो नहीं कर रहे, कि वे कह रहे कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। मैंने क्या जवाब दिया होगा जरा सोचो दो मिनट, फिर मैं बताता हूं, फिर मिलान करना अपने उत्तर से। हाँ घबराना नहीं, क्योंकि वो ध्यानावस्था होती है ना, जब तुलसी एकदम आंखें बंद करके राम का जो स्वरूप धनुष बाण और लिए बिल्कुल ऐसे खड़े हैं और उसमें भैंसा के दर्शन हो सकते हैं तो राम के दर्शन क्यों नहीं हो सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, समझना क्या कहता हूं मैं। वो बात सत्य हो जाए ना हो फिर भी तुलसीदास जी झूठ नहीं बोल रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत खतरनाक बात, ऐसे ही जो नकली लोग हैं ना, नकली सम्य दृष्टि, वे उनको मैं इतना बेईमान नहीं मानता। क्या कि जो वे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, वो आत्मा ऐसा दिखा, फिर वो ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया। कई लोग मेरे लोग आ करके बताते हैं कि पंडित जी मैं बताता हूं मेरा क्या क्या हुआ, फिर आप निर्णय करके मुझे बताना कि वो मुझे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सच बोलता हूं, सब जगह जहां जाता हूं लगभग सब जगह, और नाम नहीं बताना चाहता हूं। मैंने क्यों अभी 2-4 साल जिंदगी शांति से निकालना चाहता हूं। वो सब ध्यानाविष्ट पुरुष वाले हैं, वो झूठ नहीं बोलते क्योंकि वो इतने सज्जन होते हैं। क्या वो इतने सज्जन होते हैं और उनकी ऐसी आस्था इतनी पक्की होती है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, वो छल भी नहीं करते हैं। क्या उन्होंने जो विकल्पात्मक ज्ञान में जैसा जैसा किया तो वैसा उनको ख्याल में आ जाता है, ऐसा ऐसी समझ गया ना, और उन्हें भ्रम हो जाता है वास्तव में। इसलिए शास्त्र ज्ञान से गुरु के माध्यम से स्टडी करके 3 श्रेणियों से निकालो, पहले आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा, गुरु के उपदेश, इन 6 छेद में से निकालो, 3 छेद में से निकालो, फिर वो अनुभव है तब उसे अनुभव मानना। अरे 3 में एक ही छेद में से तो निकला नहीं ना, तो उन्हें आगम की खबर है ना, कोई उनने युक्तियां लगाई ना, कोई ऐसा ज्ञानी गुरु मिला, और ठोके किए जा रहे हैं बस खत्म। ये वो छलिया नहीं है मेरा, ये पक्का है, वे झूठ नहीं बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है क्यों, ये जो जैसा इसको लगता है ना भैंसा वाले को, अब भैंसा वाले को लगता है मैं ऐसा भैंसा हूं। जब वो सीधा सच्चा आदमी बैठा है वो ऐसा हाथ छूके देखे तो यहां सींग वींग है ही नहीं, और उसे इतना लंबा बहलाना भैंसे का सिंका हो जाता है, तो ऐसे ही इनको ऐसा होता है। मैंने वो झूठ नहीं बोलते, वो बेचारे सब भोले भाले जीव हैं, सच बोलता हूं। मैंने इस तरह के जितने जीव देखे वे बहुत सात्विक वृत्ति के होते हैं, बस थोड़े क्रैक होते हैं, आधा पागल कह सकते हैं, पर कभी कभी वो दौरा ऐसा पड़ता है कि पूरे पागल जैसे लगते हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं होते, वो सज्जन होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं, है ना। आप समझे ना, ये बिल्कुल जो मैं आप मजाक नहीं कर रहा हूं, आप उसे मजाक में मत लेना, ये मेरे जो चित्त में सही समझ में आ रहा है और इस गाथा में जो समझ में आ रहा है वो बात मैं आपको कह रहा हूं। तो भूताविष कौन है, अभी कल इस गाथा की बात नहीं करूंगा, जो कर्म के उदय से रागादिक हुए ना वे अपने पर्याय में हुए हैं, भूत वास्तव में लग जाता है और वो अमानसिक चेष्टाएं कराना लगता है, और ये ध्यान वाले में कोई भूत भी नहीं लगा, बस इसके मन की ये मानसिक बीमारी है, कहना है ना, ये बीमारी तो है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है। वो भूत लगना तो शारीरिक बीमारी है, वो शरीर में विकृति हुई है, लेकिन ये इसके ध्यान में ही, समझ गए ना, चिंतन में से ऐसी बीमारी खड़ी हो गई तो ये मानसिक बीमारी है, और उनको कर्ता कहा जाता है। अब अगली गाथा आएगी, उसका हेडिंग क्या है कि इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा अज्ञान का कर्ता इस दृष्टि से कहा जाता है वास्तव में है नहीं। ये हेडिंग है अगली गाथा का, जिसे अपन कल चलाएंगे।